मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वे इम्पोर्टेंट खबरें जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफी इम्पोर्टेंट मालूम पड़ती हैं। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो है दोस्तों कि हमने, जी हाँ, मैं जानबूझ करके हमने शब्द का प्रयोग करता, हमें गर्व होना चाहिए, हमारे देश ने यानी कि हमने अग्नि 5 मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अग्नि 5 अग्नि मिसाइल, अग्नि देखते ना, अग्नि और मिसाइल में कुछ समानता आपको दिखाई दे रही होगी। और इसे डेवलप किसने किया है? इसे डेवलप किया है हमारे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दोस्तों, यहां मैं थोड़ी सी ये बात आपको बताना चाहूंगा, कुछ अखबारों में जिस तरह से लिखा गया है तो हो सकता है आपको भ्रम हो जाए। ये हमने शुरू किया है मिशन दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र, दिव्य मतलब बिल्कुल अद्भुत, बहुत आगे तक, बहुत शक्तिशाली। दिव्य अस्त्र, अस्त्र जो छोड़ा जाता है हाथ से फेंक करके जो मारा जाता है, मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र का ये पहला मिसाइल है अग्नि 5। मैं थोड़ी सी बातें इसकी विशेषता के बारे में जरूर यहां करना चाहूंगा, क्योंकि ये जितना महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से प्री एग्जामिनेशन को देखते हुए भी कुछ बातें मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। दोस्तों, अब हम अग्नि 5 की जो कुछ विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को जान लेते हैं। पहली बात तो यह है कि यह एक साथ कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है, एक साथ कई तरह के हथियार। और चूंकि कई तरह के हथियार ले जा रहा है तो अलग अलग हथियारों से यह अलग अलग लक्ष्य को भेदने में भी सक्षम है, क्योंकि अलग अलग तरह के उसमें हथियार हैं, तो अलग अलग तरह के लक्ष्य को वो भेदेगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसे कहा जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स से यह लेस है। देखा ना आपने, मल्टीपल यानी एक साथ कई टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे क्या होगा, इससे इस मिसाइल को कहीं भी आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप युद्ध कर रहे होते हैं, चल रही होती चीजें, तो पता नहीं हमको कहां इसे ले जाना पड़े। इसका एक और भी है दोस्तों कि इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस वजह से इसे देश में कहीं भी बकायदे स्टॉल यानी कि तैनाती इसकी की जा सकती है। इसको जो क्षमता है वो 5000 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि 5000 किलोमीटर की दूरी तक यह मार कर सकती है। क्या आप इसकी स्पीड को जानना चाहेंगे? स्पीड इसकी कितनी है? 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल चलेगी। कितनी शक्तिशाली मिसाइल है। और चूंकि हमारे संस्थान ने डेवलप किया है, ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक्स पर आधारित है, इसीलिए सच पूछिए तो हमारे वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। इस तकनीक को विकसित करने के बाद दोस्तों, भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह तकनीकी मौजूद है, और इस तरह से भारत अब 6वां देश बन चुका है जिन अन्य देशों के पास यह तकनीकी मौजूद है। उन देशों के नाम हैं रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। 5 देश, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अब इसमें भारत का भी नाम जुड़ गया है जो 6वां देश बन गया है। इस पर आपकी तैयारी थोड़ी सी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि ये साइंस का भी पार्ट है और करंट अफेयर्स का पार्ट तो ये है ही। अखबारों में आपने एक और खबर पढ़ी होगी, हालांकि वो छोटी सी खबर थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी, और वो ये है कि ओपनहाइमर फिल्म को बेस्ट फिल्म सहित 7 अवार्ड मिले हैं। कौन से? ऑस्कर अवार्ड, जो दुनिया का सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार माना जाता है, ऑस्कर अवार्ड। और महत्वपूर्ण बात यह कि न केवल बेस्ट फिल्म का ही अवार्ड मिला है, बल्कि इसके जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, उनको बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है। और क्रिस्टोफर नोलन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनकी बनाई गई फिल्में मुझे बेहद पसंद हैं। कई फिल्में मैंने उनकी देखी हैं। क्या इंटेलेक्चुअलिटी के साथ वो फिल्में बनाते हैं, कैसे वो सोच लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मेरी तो सच में पूछिए तो समझ में ही नहीं आता कि क्या करते हैं वो। गजब के फिल्म डायरेक्टर हैं ओपनहाइमर। दोस्तों, ओपनहाइमर फिल्म जहां तक मुझे याद आ रहा है पिछले साल जुलाई के 3rd वीक में आई थी। उस समय बहुत ये फिल्म चर्चित हुई थी। ओपनहाइमर बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, उनके जीवन पर यह फिल्म बनी है और खासियत यह है कि इनके नेतृत्व में ही एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था न्यूयॉर्क में अमेरिका ने, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, याद रखिएगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और इस बार प्री एग्जामिनेशन में इसके पूछे जाने की बहुत संभावना है। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने ही एटम बम डेवलप किया था और जब उसका परीक्षण किया गया था तो उससे इतनी विशाल अग्नि की लपटें उठी, इतनी रोशनी उठी कि ओपनहाइमर के मुंह से निकला था आई एम अ डेथ, यानी कि मैं मृत्यु हूं। ओपनहाइमर भगवत गीता के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी थी और जहां तक मुझे याद आ रहा है भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में ये बात कही है आई एम अ डेथ, जब वो अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा रहे होते हैं उसी दौरान कृष्ण के मुंह से ये शब्द निकला है। तो उस समय गीता की भी बहुत चर्चा हुई थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस समय गीता की भी बहुत चर्चा हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई थी। तो दोस्तों ओपनहाइमर फिल्म के बारे में यदि आपको कहीं कोई टिप्पणी पढ़ने को मिलती है तो आप उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, मुझे प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से स्पेशली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी जो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा। दरअसल केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जो केंद्र सरकार है वह हमारे राज्य सरकारों के आर्थिक स्वायत्तता पर हस्तक्षेप कर रही है। किस रूप में हस्तक्षेप कर रही है कि केंद्र सरकार बीच बीच में राज्यों से कहती रहती है कि भैया जो आप बाजार से खुले रूप में उधार ले रहे हो उसे कम करो, अपने स्रोत से आय जुटाओ। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो राज्य सरकारों की जो उधारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, यानी कि राज्य सरकारें बहुत ज्यादा ऋण लेती चली जा रही हैं, और जब राज्य सरकारें ऋण लेती चली जाएंगी तो क्या होगा, उस ऋण की भरपाई के लिए वो और ज्यादा ऋण लेंगे और इस तरह से एक दुष्चक्र में फंस जाएंगी। तो केरल सरकार का कहना था कि इसके बारे में केंद्र सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि राज्य अपने राजकोष का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, वो कुप्रबंधन के चक्र में फंस रहे हैं, तो बकायदे केंद्र सरकार उनकी चिंता कर सकती है, क्योंकि जो राज्यों की अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का प्रभाव स्वाभाविक तौर पर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इसलिए यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंगाल में पिछले दिनों संदेश खाली को लेकर के जो कुछ हुआ वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं विस्तार से कोई बात करने नहीं जा रहा हूं। इसमें एक माफिया से जुड़े व्यक्ति का नाम आया था शाहजहां शेख। जब ईडी की टीम उनके यहां छापा मारने पहुंची तो बकायदे उन पर अटैक किया गया और बाद में पता लगा कि वहां की महिलाओं का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, बहुत सारी वहां की जमीन हथिया ली गई। तो फ्रेंड्स इन सारी स्थितियों को देखते हुए जब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही तो फरार हो गए और गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कोशिश हो रही है लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा सका, यहां तक कि हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए लेकिन राज्य सरकार ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। अंततः जब वार्निंग दी गई कि उन्हें 2 दिनों के अंदर गिरफ्तार करके और पेश किया जाए तो अंततः वो गिरफ्तार किए गए और पेश किए गए और हिरासत में दे दिए गए। यहां जो मामला है देखिए बहुत ही सिंपल सा है, वो ये है कि ये माफिया है और माफिया को यदि राज्य सरकार का इतना बड़ा समर्थन नहीं होता तो उनकी गिरफ्तारी में कोई दिक्कत नहीं थी, और जब कोर्ट ने नाराज होकर के दोबारा सरकार से कहा है तो फट से गिरफ्तारी हो गई। इसका मतलब है कि उन्हें सीधे सीधे कहीं न कहीं राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त था। अब यहां पर आपको एक तो राज्य सरकारों की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, राज्य सरकारों की अपनी इंडिपेंडेंसी है, और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिसे हम हायर जुडिशरी कहते हैं, उनका हस्तक्षेप है जिसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इन दोनों को अलग अलग करके देख लीजिए और इस मामले में आप देखेंगे कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती और यदि उसे इस तरह के अधिकार नहीं होते तो सीधी सी बात है कि ये माफिया सरगना शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हो पाते और वो कुछ भी करते रहते। तो ये एक बहुत ही ताजा उदाहरण है न्यायिक सक्रियता का और राज्यों में अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है या राज्यों का जो इस तरह के माफियाओं के साथ गठजोड़ है उसका। हो सकता है कि इस पर स्वतंत्र रूप से प्रश्न न पूछा जाए लेकिन चूंकि ये घटना बहुत जबरदस्त रही है, पूरे देश में बहुत चर्चित रही है, लंबे समय तक चलती रही है, इसलिए आपके दिमाग में इस घटना का दर्ज होना जरूरी है। तो दोस्तों आज के मुख्य खबरों के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।